कुंज बिहारी जय गोपी जन है वाला गया गिरिवर जय गोपी जन वाला जय गिरिवर यशोदनंदन जय गज जन यशोदनंदन जय गज जन जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
सब लोग प्रणाम करें।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधिष्ट डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। सब लोग मेरे पीछे बोले ये पंखा बंद कर दीजिए। जितने पंखे चल रहे हैं सब बंद कर दीजिए। ये पंखा चल रहा है क्या? वो पंखा बंद कर दीजिए और आगे आ जाइए। जो
दूर बैठे हैं सब लोग, आगे आइए, सब लोग आगे आइए, मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता थारूप अध्याय 18, अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 10, पृष्ठ संख्या 525। सब लोग निकालिए पेज नंबर 525। एक किताब में दो तीन लोग भी हो सकते हैं, आ जाइए। मेरे पीछे सबने निकाल लिया पेज नंबर 525, नहीं मिला इनको, नहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है 525, मिल गया। और धागा यहीं पर लगाइए, धागा निकाल के वहीं पर लगाइए जहाँ पर है। मेरे पीछे बोले हैं न दृष्ट कुशलम कर्म कुशले नानो सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, न दृष्ट कुशलम कर्म कुशले नानो सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, न दृष्ट कुशलम कर्म कुशले नानो सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। बोलिए बोलो,
कुशले नानु सज्जते,
कुशले नानु सज्जते,
रागी सत्व समाविष्टो,
रागी सत्व समाविष्टो,
मेधा विचित्र संशय,
मेधा विचित्र संशय,
न दृष्ट च कुशलम कर्म,
दृष्ट च कुशलम कर्म,
कुशले नानु सज्जते,
कुशले नानु सज्जते,
रागी सत्व समाविष्टो,
रागी सत्व समाविष्टो,
मेधा विचित्र संशय,
मेधा विचित्र संशय।
बोलिए अमृतेश, बोलो
न दृष्ट कुशलम कर्म कुशले नानु सज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो,
त्यागी सत्व समाविष्टो,
मेधावी छिन्न संशय।
बोलिए और कोई बोलेंगे? बोलिए।
न बोले और पंकज बोलो
शब्दार्थ बोलिए ना नहीं द्वेष्टि घृणा करता है अकुशलम अशुभ कर्म कर्म कुशले शुभ में ना तो अनुसज्जते आसक्त होता है त्यागी सत्व सत्वगुण में समाविष्ट लीन मेधावी बुद्धिमान छिन्न हुए संशय समस्त संशय या संदेह है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज है सब लोग मेरे साथ बोले ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकयम् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांधिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुधपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्लोक फिर से निकालें। इस श्लोक को समझेंगे, भगवान कह रहे हैं न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। अकुशल का मतलब अशुभ, जिसमें असुविधा है उससे द्वेष नहीं करता। और कुशले नानुसज्जते, और जिसमें कुशलता है या सुविधा है तो उसमें आसक्त नहीं होता है। त्यागी तो वो त्यागी है, सत्व समाविष्टो और सत्व गुण से युक्त है, मेधावी बुद्धिमान है, छिन्न संशया संशय से मुक्त है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं शीला प्रभुपाद की। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सत्वगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, द्वेष से मुक्त है, वो द्वेष से मुक्त है, द्वेष की भावना से मुक्त है, है? किसी भी व्यक्ति से वो द्वेष नहीं करता है। एक कारण से द्वेष करता है, एक कारण से द्वेष करता है, अगर वो कृष्ण भावना मृत के विरुद्ध है तो वो द्वेष करता है, अन्यथा और कोई कारण नहीं है द्वेष का, उसके द्वेष का और कोई दूसरा कारण नहीं है कि कोई जो है मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है या कोई गोरा है, या कोई भारतीय है या चीनी है, पंजाबी है, बंगाली है, तो ये कारण नहीं है उसके द्वेष के, ये कारण नहीं होते हैं उसके द्वेष का। एक ही कारण होता है, अज्ञान, अज्ञान से द्वेष करता है। न द्वेष्टि कुशलम कर्म है ना, और किसी कर्म से भी द्वेष नहीं करता, किसी कर्म में अगर असुविधा भी है लेकिन कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है तो उसे करता है। द्वेष अकुशलम कर्म है, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। अकुशल कर्म का मतलब है कि जिसमें अगर कुछ असुविधा है लेकिन तो भी कृष्ण की प्रसन्नता है तो वो द्वेष नहीं करता, उस कार्य को करता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उस कार्य को करता है ना। और कुशले नानुसज्जते, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है। अगर कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध है लेकिन कर्म बड़ा अच्छा है, सुविधा है, बहुत सुविधा है काम करने में, लेकिन कृष्ण भावनामृत के अनुकूल नहीं, कृष्ण भावनामृत में बाधक है तो वो उसमें आसक्त नहीं होता है। त्यागी तो वही त्यागी है और वही सत्वगुण में आविष्ट है और वही मेधावी है और वही छिन्न संशय वाला है। तो प्रभुपाल लिखते हैं आगे, वो उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। उपयुक्त स्थान और उचित समय पर, तो वो डरता नहीं है, यानी राग और द्वेष से मुक्त है। उसका एकमात्र द्वेष अज्ञान से है, और उसका एकमात्र राग किससे है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में उसका अनुराग है। और द्वेष किससे है, कृष्ण भावनामृत के विरोधी जो कार्य हैं उनसे वो उसका द्वेष है ना। तो और कोई दूसरा राग द्वेष का कारण नहीं होता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो उसको कोई संशय नहीं है, इस विषय में उसका कोई संशय नहीं है कि वो सोचे कि मैं ये करूं ये ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो उसको कोई संशय नहीं होता है क्योंकि उसका सब संशय दूर हो चुका है, है? एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो कार्य में अनुराग रखता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि वो द्वेष से मुक्त है और राग से मुक्त है, राग और द्वेष से बिल्कुल मुक्त है ना। उसका राग एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता में है, कृष्ण को प्रसन्न करने में उसका अनुराग है। और द्वेष किन से द्वेष है, जो कृष्ण के विरोधी हैं, उनसे द्वेष है। तो कोई भी कार्य हो, अकुशल कार्य है, अकुशल कार्य का मतलब जिसमें सुरक्षा भी ना हो, खतरा भी हो, अगर खतरा भी है तो खतरनाक कार्य को भी वो करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यहाँ तक कि अपने जीवन के लिए भी अगर संकट है तो जीवन को संकट में डाल करके भी वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना। जैसे प्रभुपाद ने नियम बनाया है सवेरे मंगल आरती में आने का, तो 4:30 बजे मंगल आरती होती है, तो उठने में बड़ी असुविधा होती है और जाड़ों में जाड़ा भी लगता है और गर्मियों में रात भर नींद नहीं आई तो समय अच्छी नींद आ रही है तो शैया को त्यागने में बड़ी असुविधा होती है। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता है कि हम मंगल आरती में आए तो हम मंगल आरती में उठते हैं, तो मंगल आरती में उठते हैं। असुविधा होती है, जाड़ों में भी असुविधा होती है कि बहुत जाड़ा है और गर्मी में असुविधा होती है कि उस समय नींद आती है, लेकिन शैया को त्यागना है, निद्रा को त्यागना है और स्नान करके और धुले वस्त्र पहन करके और तिलक धारण करके मंगल आरती में आना है। तो अकुशल कर्म क्या है? अकुशल है, अकुशल असुविधाजनक है, असुविधा हो रही है, लेकिन करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। जैसे कि घर की स्त्रियां हैं तो पहले तो गैस नहीं थी और ये सब सुविधाएं नहीं थी, लकड़ी में ही चूल्हे में ही भोजन बनाना होता था, एसी भी नहीं होता था और धुआं भी खूब उसमें निकलता था और लकड़ी में आग जला करके चूल्हे में जो है भोजन बनाते थे, तो गर्मी में बहुत परेशानी होती है, धुआं भी लगता है और गर्मी में और ज़्यादा गर्मी। इन घर की स्त्रियां भोजन बनाती है ना। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य है जिसमें असुविधा हो वो करते हैं। असुविधा अकुशल कर्म का अर्थ ये भी है कि आप अगर क्लास में बैठे हुए हैं और कोई आपसे जूनियर भक्त है, कोई नया भक्त है, अगर वो क्लास दे रहा है तो आपको असुविधा होती है उससे, क्योंकि आपका इसमें सम्मान घटता है, यानी कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण की प्रसन्नता है तो आप अपने सम्मान को घटा करके भी आप बैठते हैं, तो ये भी अकुशल कर्म है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है इसलिए करते हैं। और कुशले नानुसज्जते, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, तो कुशल कर्म का मतलब है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत से कार्य होते हैं जिनमें बहुत सुख मिलता है, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। कुशल कर्म तो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। आपकी इच्छा होती है कि फिल्म देखें और कई तरह के नाटक हैं या कई तरह के क्लब हैं वहाँ पर जाएं तो बहुत अच्छा होती है, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध हैं, इसमें कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, तो कुशल कर्म से भी आप आसक्त नहीं होते, आप उसको त्याग देते हैं। आपकी इच्छा होती है बहुत खाने की, वहाँ की बाज़ार में कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, चाट मसाला है और जो है मीठा है, खट्टा है, कई तरह की भोजन की चीज़ें मिलती हैं, है ना, आपके खाने की इच्छा होती है तो उसमें कुशल कर्म है, लेकिन आप नहीं करते, क्यों? क्योंकि कृष्ण को भोग नहीं लगा है, कृष्ण को अर्पित नहीं हुआ है ना, तो वो उसमें आसक्त नहीं होते। और अकुशल कर्म अगर रूखा सूखा है कुछ कैसा भी बना है, भगवान को भोग लगा है, प्रसाद है, तो वो आप खाते हैं तो उसमें असुविधा होती है, उसमें टेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कृष्ण का प्रसाद है तो आप खाते हैं, तो ये क्या है? अकुशल, अकुशल कर्म है ना। तो कई बार ऐसे भी स्थितियाँ आती हैं कि हमारे जीवन के लिए भी संकट होता है, लेकिन तो भी उस कार्य को करना है। जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि अगर आप मर रहे हैं, अगर आप मर रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए कि मरना तो है ही है, तो मंगल आरती में क्यों ना जाएं, मंगल आरती में ही मरें, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप मर रहे हैं तो आप क्राउलिंग करके, क्राउलिंग माने कलहर कलहर करके भी आए, मंगल आरती में आइए। तो शरीर छोड़ना ही है तो वीरता पूर्वक शरीर को छोड़िए। तो अकुशलम कर्म है, ये बड़े कष्ट की बात है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपको कष्ट भी हो रहा है तो भी आपको उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे जटायु, तो जटायु ने जब देखा कि रावण सीता का अपहरण कर रहा है, तो जटायु जानते थे कि रावण से युद्ध करने का मतलब है अपनी मौत, अपनी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया है और अपने प्राण त्याग दिए। तो अकुशल कर्म है, इसमें तो अपनी कुशलता नहीं है, अपनी सुरक्षा नहीं है, लेकिन राम की प्रसन्नता के लिए जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया और अपना शरीर छोड़ा। तो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। उसी प्रकार की बात भगवान ने तीसरे अध्याय में भी बताई, श्रेयान सुधर्म विगुणा पर धर्मात्नुदार, अपना सुधर्म में कोई गुण ना हो तो भी वो कल्याणकारी है। जैसे यहाँ पर अकुशल कर्म कहा है, अकुशल कर्म, और यहाँ पर सुधर्म विगुण, बिना गुण, कोई गुण नहीं है लेकिन है अपना सुधर्म, तो अकुशल कर्म है या अपना सुधर्म है जिसमें गुण नहीं है, भला दोष है लेकिन वो कल्याणकारी है, अपना सुधर्म है। अर्जुन का सुधर्म है युद्ध करना और उसमें अपने ही संबंधियों की हत्या हो रही, लेकिन सुधर्म है तो उसमें बड़ा दोष है, अपने हाथ से अपने ही मामा चाचा भाई भतीजे की हत्या करना तो अकुशल कर्म है या विगुण है। सुधर्म है, बड़ा दोष है, लेकिन वो कल्याणकारी है। और कुशले नानुसज्जते, कुशल कर्म है पर धर्मात् सुनुचितात्, पर धर्म, पराय धर्म है, बहुत अच्छा उसको आप कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा अपना सुधर्म है, वो कल्याणकारी है। पर धर्मात् सुनुचितात्, तो पराय धर्म की तुलना में अपना सुधर्म कल्याणकारी है, जबकि पराय धर्म में बहुत गुण हैं और अपने सुधर्म में बहुत दोष हैं। तो भी दोष ये भौतिक दृष्टि से हमें दोष दिखाई पड़ते हैं, भौतिक दृष्टि से दोष दिखाई दे, लेकिन वो दोष नहीं है वास्तव में, लेकिन दोष सामान्य व्यक्ति की नज़रों में वो बड़ा दोष दिखाई पड़ता है। अर्जुन के सामने जो युद्ध है आ गया है, तो इस युद्ध में बड़ा दोष, अर्जुन के ही अपने भाई हैं, अपने संबंधी हैं, तो इनके साथ युद्ध करना है तो बड़ा दोष, लेकिन सामान्य दृष्टि से ये दोष दिखाई देता है ना, या अकुशल, ये कर्म अकुशल है, कुशलता नहीं है। ये असली कुशलता तो इसी में है, असली सुरक्षा तो इसी में है, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अगर कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वही सबसे बड़ा गुण है। ये सामान्य दृष्टि से लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने से क्या फायदा है, इसमें तो अपने ही संबंधियों की हत्या हो रही है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ रही है, तो हम कृष्ण को प्रसन्न करने से क्या फायदा है? हाँ, हमारी इंद्रिय तृप्ति में तो बाधाएं हो रही, तो इसमें तो बड़ा दोष है। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा गुण है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना। तो श्रेयान सुधर्म विगुण पर धर्मात् सुनुचितात्, अपना जो सुधर्म है वो गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन तो भी कल्याणकारी है। अर्जुन को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि अगर तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का जो सुधर्म है युद्ध करना है, अगर युद्ध का अवसर आए तो उसे युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करने में बड़ा दोष है। परधर्मात् सुनुचितात्, पराय धर्म अच्छी प्रकार से किया जाए तो भी उससे अच्छा अपना सुधर्म है। तो परधर्म का अर्थ है कि जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के सामने अगर युद्ध का अवसर आता है तो वो युद्ध नहीं करता। समोदमस्तपः शौचम शान्तिरार्जवम् एव च, शांति, शांति का मतलब सहनशीलता, तो वो युद्ध नहीं करता। क्षत्रिय सहन नहीं करता, युद्ध करता है, उसका सुधर्म है। और ब्राह्मण सहन करता है, युद्ध नहीं करता, तो उसका सुधर्म है। तो कोई कहेगा कि ब्राह्मण का धर्म जो है ये ज्यादा अच्छा है कि भाई सहन करो, युद्ध मत करो, तो मैं तो यही कर्म करूंगा, सहन करने का कर्म करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ब्राह्मण का ये धर्म। लेकिन क्षत्रिय के लिए ये धर्म परधर्म है, परधर्मात् सुनुचितात्। तो क्षत्रिय जो है बहुत अच्छी प्रकार से इस धर्म का आचरण करता है कि सहन करता है और युद्ध नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा कल्याण का कल्याण उसका उसमें है कि वो सहन ना करे और युद्ध करे। तो सुधर्म और परधर्म, परधर्म तो पराये व्यक्ति के लिए परधर्म कल्याणकारी है और अपने सुधर्म कल्याणकारी है। और सामान्य दृष्टि से वो लगता हो कि भाई सुधर्म में कोई गुण नहीं है, परधर्म में बड़ा गुण है, तो अपनी दृष्टि है और वो दृष्टि बदलती रहती है। इसके जो है अपने मन के कारण जो स्थिति है वो बदलती रहती है। तो हमारे मन में कभी जो गुण दिखाई दे रहा है वो फिर बाद में दोष दिखाई देने लगता है, और जहाँ दोष दिखाई देता है वहाँ पर गुण दिखाई देने लगता है। तो मन का जो स्वभाव है वो बदलना है, बदलता रहता है। तो हमें गुण और दोष कभी किसी चीज़ में गुण दिखाई देते हैं तो फिर उसमें दोष दिखाई देने लगते हैं, जिसमें दोष दिखाई देते हैं उसमें गुण दिखाई देने लगते हैं। मन की जो स्थिति है बदलती रहती है। लेकिन जो सत्व समाविष्ट है तो उसका जो है बदलता नहीं उसका, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि है। यहाँ पर कहा गया सत्व समाविष्ट हो, सत्व गुण में समाविष्ट है, आविष्ट है सत्व गुण में, तो इसलिए उसके विचार बदलते नहीं है। निश्चित रूप से उसने जो है एक ही सिद्धांत अपनाया है कि कृष्ण को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण है, और कृष्ण की प्रसन्नता जिसमें नहीं है उसमें अपना कल्याण नहीं है, अपनी सुरक्षा नहीं है। तो केवल यही उसका जो है निर्णय होता है, तो वो निर्णय उसका पक्का है। छिन्न संशय का मतलब है उसके अंदर संशय होते ही नहीं, और नहीं तो वो संशय में हमेशा डूबा रहता है, संशय में डूबा रहता है, कभी सोचता है कि ये करना चाहिए, फिर उल्टा सोचता है ये नहीं करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये नहीं करना चाहिए, तो हमेशा वो संशय में भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मेधावी छिन्न संशया, कि संशय उसके छिन्न हो चुके हैं। गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में भी संजय ने कहा है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिर्म तिर्म में, कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और यत्र पार्थो धनुर्धरा और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है तत्र श्री, तो वहाँ पर शोभा भी है, तत्र श्री विजयो विजय भी है, तत्र श्री विजयो भूतिर और विभूति भी वहीं है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर और वहीं पर नीति भी ध्रुवा है। ध्रुवा का मतलब अचल नीति, अचल नीति, नीति जो है स्थिर है, चलायमान नहीं होती उसकी नीति। ध्रुवा नीतिर मतिर मम है, ये मेरी मति है। संजय कहते हैं कि मेरा मत यही है कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है वहाँ पर अचल नीति है, ध्रुवा नीति। यहाँ पर कहा है छिन्न संशया, तो उसमें संशय सब छिन्न हो जाते हैं, है ना। तो जहाँ पर कृष्ण है तो वहाँ पर संशय नहीं रहता है। छठवें अध्याय में भी अर्जुन ने कहा एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम रहस्य से सदा, कि मेरा संशय हे कृष्ण आप अशेष रूप से छेदन करने में समर्थ हैं, मेरा जो संशय है उसको छिन्न करने में आप पूरी तरह से समर्थ हैं। तो धन्य संशय से छेता ना है प्रबद्धते, और आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा इस संशय का छेदन करने में समर्थ नहीं है। तो कृष्ण के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो संशय का छेदन कर सके। तो कृष्ण का अगर हम आश्रय लेते हैं तो कृष्ण हमारे संशयों का छेदन करते हैं। मेधावी छिन्न संशय, दसवें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांदिते, कि जो सतत युक्त हैं और प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं तो मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। मतलब संशय दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। नाम ही बुद्धि योगम तम ये न माम अप्यान, जिसके द्वारा वे मेरे निकट आते हैं। तो उनकी एक दिशा निश्चित है कि कृष्ण की ओर जाना है, तो कोई संशय नहीं। अगर एक दिशा निश्चित है कि मुझे कृष्ण की ओर जाना है तो कृष्ण दिशा दिखलाते हैं, तो कोई संशय नहीं है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो कभी सोचता इधर जाऊँ, कभी सोचता उधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, और जहाँ भी चौराहा मिलता है तो सोचता है कि अब तीन रास्तों में कौन से रास्ते में जाना है, सोचता रहता है। हर चौराहे में वो सोचता है अभी तीन रास्ते में कौन से रास्ते में जाऊँ, है ना। लेकिन जिसकी दिशा निश्चित है वो कृष्ण दिशा दिखा रहे हैं, कृष्ण उसको प्रकाश दे रहे हैं, तो फिर वो जो है उस दिशा में सीधे मुड़ जाता है, उससे कोई संशय होता ही नहीं, मुझे तो इधर इसी दिशा में जाना है, सीधे जाता है। मेधावी छिन्न संशय, तो संशय उसके जो है मतलब छिन्न हो चुके हैं क्योंकि उसकी दिशा निश्चित है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति रहे तो की तो ही, जन्म जन्म में आपके ही चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति रहे बस, और बाकी उसको कुछ भी चिंता नहीं है। भविवा दिविवा भविवा ममास्तु वासो, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं और चाहे पृथ्वी में रहूं, दिविवा भविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम, चाहे नरक में जाऊं अवधूरित सारदार बिंदो चरणों ते मरने भी चिंतयामी, आपके जो है जो चरण कमल है उनका ही चिंतन करूं मरण काल तक, बस यही मेरी एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण के चरणों का चिंतन करूं मरण काल तक। बाकी जो है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं नरक में रहूं, चाहे पृथ्वी में रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, कहीं भी रहूं, है ना। तो छिन्न संशय, उसके संशय छिन्न है। शिक्षा संघ में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, चाहे ब्रह्मा का जन्म मिले चाहे कीड़े का जन्म मिले कुछ विचार नहीं, ऐसे कोई विचार नहीं है। कि मुझे पशु का शरीर मिले और चाहे पक्षी का शरीर मिले, चाहे कीड़े का शरीर मिले, हैं इन क्या मिले, क्या मिले, भवतात भक्ति रहे तो की, तो ही आपके चरण कमलों में अहेतु की भक्ति बनी रहे, तो कोई संशय नहीं है। कहाँ जाए अकुशल अकुशल स्थिति हो, चाहे कितनी भी असुविधा जनक स्थिति हो, और चाहे कितनी भी कुशल स्थिति हो, सुविधाजनक स्थिति हो, है कोई विचार नहीं, सुविधा और असुविधा का कोई विचार नहीं है, केवल एक ही विचार है कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन मिले, कृष्ण के चरण कमलों के हेतु की भक्ति मिले, है तो केवल यही एक लक्ष्य रहता है, इसलिए छिन्न संशय है। तेषामेवानुकम्पार्थम अहम अज्ञान जमतमा ना श्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे ने भासुदा, उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को, अज्ञान जमतमा ना श्यामी मैं नष्ट करता हूँ। यहाँ कहा छिन्न संशय, संशय को छिन्न करता हूँ। और दसवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हम अज्ञान जमतमा ज्ञान से उत्पन्न अंधकार को मैं दूर करता हूँ। कोई संशय, संशय अज्ञान से ही संशय उत्पन्न होते हैं, अज्ञान से ही अंधकार उत्पन्न होता है, संशय का अंधकार उत्पन्न होता है। तो नाश्यामी तो मैं नष्ट करता हूँ, आत्मभावस्तो हृदय में स्थित होकर के ज्ञान दीपेन भासदा ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा, तो ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को मैं नष्ट करता हूं। तो इसलिए उसको भगवान कहते हैं मेधावी, तो वही मेधावी है और वही छिन्न संशय, उसके संशय छिन्न है ना। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, यहां पर अकुशल और कुशल कर्म की बात भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, लाभालाभ हो, लाभ और हानि को भी समान बना करके, जया जयो विजय और पराजय को भी समान करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, तब तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। नैवम पापम अबापसी, इस प्रकार से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो कुशल और अकुशल, लाभ और हानि, और जय और पराजय, सुख और दुख, जितने भी द्वंद हैं उन सब में मुक्त है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से जो मुक्त होता है ना, तो वो मेधावी है, वो छिन्न संशय है, संशय उसके छिन्न है। तो एकमात्र लाभ कृष्ण भावनामृत है, और जो कृष्ण भावनामृत को लाभ नहीं समझते हैं तो उनकी बुद्धियां फिर अनेक शाखाओं वाली होती हैं, तो फिर संशय भरे रहते हैं, संशय भरे रहते हैं, है ना। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते, तो निश्चयात्मक बुद्धि उनकी स्थिर होती नहीं। भोगे स्वर्ग प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेत साम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते, भोगे स्वर्ग में आ सकते हैं, भोगे स्वर्ग प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेत साम, और उसके द्वारा उनका चित्त हरण हो चुका है, तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाध होना, तो समाधि के प्रति यानी कृष्ण भावनामृत के प्रति उनकी निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। बहुत शाखा है नंतास बुद्धि व्यवसाय ना, बहुत बहुत शाखाओं वाली उनकी जो बुद्धि है, बहुत शाखाओं वाली अनंत होती है, जैसे वृक्ष है तो शुरू में तना एक ही होता है और फिर उसकी शाखाएं बहुत होती हैं और शाखाओं से और शाखाएं निकलती, फिर उनकी और शाखाएं निकलती, अनंत अनंत शाखाएं हो जाती हैं, दूसरी आप गिन नहीं सकते कितनी शाखाएं, एक शाखा के अंदर 50 शाखाएं और फिर उसकी एक एक शाखा के अंदर भी 20-20 शाखाएं, फिर उसकी भी एक से एक शाखा में और 20-20 शाखाएं, अनंत शाखाएं। तो वो परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। चिंताम अपरमेयाम चप्रलयान ताम अपाश्रिता, तो उनकी जो चिंता है वो अपरिमेय चिंता होती है और प्रलयांताम और मृत्यु पर्यंत उनकी जो है अनेक चिंताएं, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से उनका चित्त विभ्रांत रहता है, स्थिर लक्ष्य है ही नहीं, अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल है समाप्रता, मोह के जाल में बुरी तरह से जो ढके हुए हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाप्रता, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु, काम भोगों में आसक्त हैं और अपवित्र नरकों में जाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो वो कुशल और अकुशल का विचार ना करके एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी, जो गृहस्थ हैं वो कैसे है, जो गीता है वो गृहस्थों के लिए है, अर्जुन गृहस्थ हैं, अर्जुन गृहस्थ हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ हैं, भक्त विनोद ठाकुर भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कि छो मोर है, मानस देह गे है, मानस देह गे है जो किछु मोर अर्पिल तू अपदे नंद किशोर, मानस देह गे है, मानस का मतलब मेरा मन और मेरा शरीर और मेरा घर, जो कुछ भी मोरा है मेरा है, अर्पिल तू अपदे नंद किशोर, तो हे नंद किशोर आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ, है ना। तो घर है, परिवार है, तो उसके केंद्र में हम कृष्ण को रख लें, कृष्ण को अगर हम अपने घर का केंद्र बना लें, अपने परिवार का केंद्र बना लें, तो फिर सब कुछ जो है कृष्ण में केंद्रित हो जाता है, कि घर में भोजन बनेगा तो पहले कृष्ण को भोग लगेगा तभी किसी को मिलेगा खाने को, तो इस तरह से हम कृष्ण को केंद्र बना लेते हैं, तो कृष्ण ही घर के मालिक हो जाते हैं और हम सब लोग कृष्ण के सेवक हैं। अपने घर में कृष्ण का एक मंदिर बना लेते हैं और वो जो मंदिर है या जो कमरा है तो वो उसमें केवल कृष्ण की ही हम चर्चा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे और कृष्ण का ही श्रवण कीर्तन करेंगे, तो इस तरह से घर में सवेरे शाम अगर श्रवण कीर्तन करते हैं और पूजा करते हैं और कृष्ण को भोग अर्पित करके ही भोजन करते हैं, तो यही घर क्या हो जाता है, वैकुंठ बन जाता है। भक्तों ठाकुर 12 बच्चों के पिता थे, लेकिन वे जो है सातवें गोस्वामी कहे जाते हैं, सप्तम गोस्वामी, 6 गोस्वामियों के नाम तो ही हैं लेकिन सातवें गोस्वामी कहे जाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जबकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इतनी ऊंची उनकी पदवी है और जो है इतना बड़ा परिवार, लेकिन सातवें गोस्वामी हैं श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, तो सातवें गोस्वामी कहे जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन भी जो है पवित्र किया जा सकता है कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा, कर्मणे भी संसिद्धि महास्थिता जनकादेह, तो जनकादि राजाओं ने कर्मों के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, तो उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया, जितने भी हरि बोल, धन्यवाद। तो जितने ही राजा हुए हैं, जनक जैसे राजा हुए हैं, तो वे राज्य करते हुए और महल में रहते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। कर्मणे भी संसिद्धि महा जनक आदेहा, अबे राजर्षि कहलाते हैं। तो राजर्षि का मतलब राजा के रूप में ऋषि। तो कुछ सिद्धांत हैं जिनका अगर हम पालन करें तो आप जो है वैसे ही रहेंगे जैसे कि जल में कमल का पत्ता होता है। लिप्यते न सपापेन पद्म पत्र में वामभसा, कि जैसे कमल का पत्ता है पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता है। कमल का फूल की बात नहीं करें, कमल के पत्ते की बात करें। कमल का पत्ता हरा होता है ना, उसको आप देखिए। कमल तो कमल में पानी तो जो गीला हो जाता है ना, लेकिन कमल का जो पत्ता है हरा हाँ, तो पता नहीं यहाँ दिल्ली में कितने लोगों ने देखा है। हाँ तो सही, कितने लोगों ने देखा, तो ज़्यादा लोग नहीं देखा। तो कमल का जो पत्ता है तो पानी में के ऊपर रहता है हमेशा, पानी ऊपर रहता है। और पानी की बूंद अगर जाती है तो उसमें मोती की तरह वो अलग रहती है उससे, है ना। हाँ कभी हवा चले तो गिर जाएगी, वो कमल का जो पत्ता है वो गीला नहीं होता है। तो लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रम में वामभसा, तो वो पाप से लिप्त नहीं होता है, जैसे कि कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता है। कमल के पत्ते के ऊपर आप पानी भर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे आप करोगे सब पानी गिर जाएगा, वो सूखा का सूखा है, बिल्कुल सूखा है कमल का पत्ता। अब यहाँ कमल का पत्ता दिखाई नहीं पड़ता, कमल का फूल तो फिर भी आता है, ये कमल का पत्ता नहीं आता। कमल के पत्ते में ये विशेषता है। गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले डाको, तो आप घर में रहें या चाहे वन में रहें, सदा हरि बोलते रहें, हरि नाम बोलते रहें। तो अगर आप हरे कृष्ण मंत्र हमेशा बोलते रहेंगे तो आप जो है पापों से लिप्त नहीं होंगे। पापों के बीच में रहते हुए भी आप पापों से लिप्त नहीं होंगे। कमल का पत्ता है वो पानी में ही पैदा हुआ है और पानी के ऊपर रहता है, हैं, और पानी से गीला नहीं होता है। तो बहुत ही संसार पापों का ही पाप ही पाप है, उसी में आप रहते हैं और तो भी आप पाप से लिप्त नहीं होते। कितनी विशेष बात, कितनी आश्चर्य। तो ऐसा है तो हम जो है कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा इस भौतिक संसार के बीच में रह करके भी हम पापों से लिप्त नहीं होते। हाँ जी, आपको आपको बोलना है कुछ और किसी? चालू है, चालू है। हाँ अच्छा अच्छा उदाहरण दिया है कि जब आप एयरप्लेन में जाते हैं तो जमीन में गड्ढे भी हैं और ऊंचाई भी है। जमीन की ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि वो बहुत ऊपर है। तो इसी प्रकार से अकुशलता और कुशलता जो भी जीवन में ये सब होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो उसको कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो बहुत ऊँचे धरातल पर हैं, है ना। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कृष्ण की प्रसन्नता अगर प्राप्त करता है, यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि उससे बढ़कर के कोई लाभ वो समझता ही नहीं, उसको प्राप्त करके इससे बड़ा और कोई लाभ समझता नहीं वो। जिसमें दुखे न गुरु नापे बचा लेते, उसमें स्थित होकर के वो बड़े से बड़े गुरु से बड़े दुख से भी वो विचलित नहीं होता है, कि इतना बड़ा लाभ उसको प्राप्त हो गया है। 10 करोड़ रुपए का अगर किसी को लाभ हो गया है तो 10 रुपए और मिल जाए या 10 रुपए का घाटा हो जाए क्या फर्क पड़ता है? उसको 10 करोड़ रुपए का अगर लाभ हो गया है तो 10 रुपए का घाटा होता है, 10 रुपए का फायदा होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ विचार, कोई विचार नहीं करता उसका। 10 रुपए का क्या विचार करेगा? उसको करोड़ों रुपए का जो है फायदा हो रहा है, डेली करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है, 10 रुपए जो है का घाटा है, 10 रुपए का फायदा है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।
हरी बोल प्रभु जी, प्रदुमन प्रभु।